हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा और कृषा ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया था। कृषा जानना चाहती थी कि जो ध्रुव के दिल में चल रहा है, या तारा भी उसे लेकर वही महसूस करती है। हालांकि ध्रुव के मना करने के बाद कृषा ने तारा के सामने उसका जिक्र तक नहीं किया था, लेकिन जब ध्रुव का कॉल आया और वो राणा मेंशन जाने की बात करने लगी तो तारा का चेहरा उतर गया। तारा के बाद अब कृषा मेहर से मिलना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि क्या मेहर सचमुच ध्रुव के लिए सही चॉइस है। इधर कृषा को तारा के साथ छोड़कर ध्रुव राणा मेंशन पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी सगाई की तैयारियां वाकई शानदार तरीके से चल रही थी। वैसे भी उसकी और मेहर की सगाई में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे। जैसे ही ध्रुव अंदर गया, उसने देखा कि सारा ने डिजाइनर्स को बुला रखा था और वहां ढेर सारे ड्रेसेस रखे हुए थे। सारा और मेहर मिलकर थीम के हिसाब से सबके लिए कपड़े चुन रहे थे। ध्रुव के आते ही सारा की नज़र उसकी ओर गई। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ी और बोली, चलो अच्छा है कि तुम्हें इस बात का ख्याल तो है कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, वरना तुम्हारे मॉम डैड तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वे कोई गेस्ट हों। सारी तैयारियां मुझे ही करनी पड़ रही हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, मासी भी तो माँ की तरह होती हैं। मैंने कभी आपके किसी काम के लिए मना किया है जो अब आप मुंह बना रही हैं? ध्रुव ने भौहें उठाकर पूछा। मुझे सारा काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़े तुम लोगों की चॉइस के हिसाब से होने चाहिए। अगर एन मोमेंट पर कोई ड्रेस सही नहीं लगी तो फिर क्या करेंगे? मैं नहीं चाहती कि किसी का मूड स्पॉइल हो। आखिर राणा खानदान के बेटे की सगाई जो हो रही है, सारा ने जवाब दिया। मासी, आप कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले रही हैं। राणा खानदान में मेरे अलावा और भी बेटे पैदा हुए हैं और उनकी शादी भी हुई है। आप बस सिलेक्ट करो, मैं कुछ भी पहन लूंगा, बस थोड़ा कम्फर्टेबल होना चाहिए, ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा। युग को कम से कम कृषा के साथ अपनी शादी को लेकर कुछ तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन ध्रुव तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसकी नहीं किसी और की सगाई में उसे तैयार होकर जाना हो। सारा ध्रुव को डांट रही थी, तभी हरलीन भी वहां आ गई। उसे देखते ही ध्रुव तुरंत उसके पास गया और गले लग गया। बुआ, अब आप ही समझाइए मासी को, जब भी मिलता हूँ ऐसे डांटती हैं जैसे मैं 4 साल का बच्चा हूँ। डैड की शादी की सारी तैयारियां आपने की थी, लेकिन आपने कभी कंप्लेन नहीं की, और मासी की तो शिकायतें खत्म ही नहीं होती, ध्रुव ने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा। वेरी बैड सारा, हरलीन ने मुस्कुराकर कहा। इतना प्यार से कौन डांटता है? एक तो हम इसका काम कर रहे हैं, ऊपर से ये हमारी एक दूसरे से शिकायत कर रहा है। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? एक राउंड तक नहीं लगाया तुमने घर का। अब तुम आ गए हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। मेहर वहीं खड़ी थी। उसने महसूस किया कि ध्रुव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आते ही वो अपनी फैमिली के साथ व्यस्त हो गया था। युग और ध्रुव में कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग थीं। एक फ़र्क ये था कि युग को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं था, जबकि ध्रुव उनके बीच आते ही बच्चा बन जाता था। इस फर्क का सीधा कारण था कि युग का बचपन बहुत बुरा बीता था, जबकि ध्रुव को ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट मिला था। उसे सब बहुत प्यार करते थे। युग अकेला था, जबकि ध्रुव के पास पूरी फैमिली का साथ था। मेहर को मन ही मन जलन महसूस हो रही थी। ध्रुव का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मेहर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ी और बोली, कोई बात नहीं ध्रुव, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम सब मिलकर कर लेंगे। वैसे भी मैं सारा मासी की पूरी हेल्प कर रही हूँ। मेहर को ध्रुव का सपोर्ट करता देख सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ गई और सब एक साथ बोले, हाँ भाई, अब हमारी हेल्प की क्या जरूरत है? ध्रुव ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, यू नो व्हाट, आप सबके सब नौटंकी हो। ध्रुव का ध्यान एक बार फिर मेहर से हटकर अपनी फैमिली की तरफ चला गया। अलीजा ने इस बात को नोटिस किया। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे मेहर की तरफ खींचते हुए कहा, देखो हमारे टू बी ग्रूम को सबके सामने बात करने में शर्म आ रही है, चलो इन्हें थोड़ी प्राइवेसी देते हैं, जाओ अकेले में बात कर लो। ध्रुव मना करना चाहता था, लेकिन मेहर ने जल्दी से उसे थैंक्स कहा। मजबूरन ध्रुव को मेहर से बात करने के लिए उसके कमरे में जाना पड़ा। मेहर नीचे के गेस्ट रूम में ठहरी हुई थी। रूम में आते ही मेहर ने दरवाजा बंद किया और ध्रुव के सीने से लग गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऊपर से जब तुम लंदन के लिए निकले थे तब हमारी बहस भी हो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी शादी का डिसीजन ले लोगे। मेहर का इतना करीब आना ध्रुव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। जहां बाहर वो अपनी फैमिली के साथ हंस बोल रहा था, वहीं अंदर आते ही ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रोफेशनल मीटिंग में हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, ध्रुव ने जवाब दिया और जल्दी से मेहर से अलग हो गया। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेहर के करीब आने से उसे अंदर घुटन महसूस हो रही हो। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुमने ड्रेस डिसाइड कर लिया? हाँ, थीम हमने गोल्डन रखी है, तो मैंने अपने लिए गोल्डन कलर का इवनिंग गाउन डिजाइन करवाया है। तुम्हारी ड्रेस भी थीम से मैच करेगी, मेहर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसे अच्छा लग रहा था कि ध्रुव उनकी सगाई में इंटरेस्ट ले रहा था।
नहीं, मुझे ब्लैक पसंद है। मुझे नहीं लगता कि डैड भी ब्लैक के अलावा कुछ और पहनना पसंद करेंगे, सो ब्लैक ही डिजाइन करवाते हैं। ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया। उसने गोल्डन पहनने से साफ मना कर दिया था, लेकिन सब थीम के हिसाब से ही कर रहे हैं। डोंट वरी, हमने जो गोल्डन लिया है वो इतना ब्राइट नहीं है, मेहर ने उसे समझाते हुए कहा। मैं इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। अगर तुम्हें मेरे साथ मैच करने के लिए ब्लैक आउटफिट डिजाइन करवाना है तो अच्छी बात है, वरना अपनी गोल्डन थीम के साथ स्टिक रहो। ध्रुव ने हल्का इरिटेट होकर जवाब दिया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। ध्रुव के इस तरह ड्रेस के कलर को लेकर बहस करके चले जाने से मेहर का चेहरा लटक गया। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त मुंह पर मॉम मासी डैड का माला जपता रहता है। मुझे इसका वो रूप पसंद था जब उसने मुझे बचाते हुए दक्ष को सबक सिखाया था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इसकी जिंदगी अपने मॉम डैड से शुरू होकर उन पर ही खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे ध्रुव को इन सबसे दूर रखना होगा, मेहर ने सिर पकड़कर कहा। मेहर का नेचर काफी अलग था। वो थोड़ी डोमिनेटिंग थी और हमेशा दूसरों पर अपनी बात मनवाती थी। जब से वो ध्रुव से मिली थी, ध्रुव अपनी मनमानी करता था। ऊपर से वो उसे इतना भाव भी नहीं देता था। मेहर रायचंद ने कभी अपनी चीज किसी से शेयर करना नहीं सीखा। यहाँ तो बात मेरे होने वाले हस्बैंड की है। मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें जन्म दिया और इस काबिल बनाया, लेकिन अब तुम उनके बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। तुम्हारी अपनी लाइफ है। ग्रो अप ध्रुव राणा। लगता है अब तुम्हें अपने करीब लाने के लिए मुझे अपना तरीका अपनाना होगा, मेहर ने हल्के गुस्से में कहा। मेहर तुरंत बाहर आई तो उसने देखा कि कृषा भी तब तक पहुंच चुकी थी। अब तक तो उसे राणा फैमिली को ही हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, और कृषा के आने से वो और परेशान हो गई। वो कृषा से पहली बार अपनी बर्थडे पार्टी पर मिली थी, और ये साफ था कि कृषा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसे में मेहर के लिए उसे इम्प्रेस करना एक बड़ी चुनौती थी।
मेहर ने कृषा को देखकर आंखें घुमाते हुए मन में कहा, सही है, अब इसकी मॉम को भी इम्प्रेस करो। थैंक गॉड मिस्टर राणा इस फैमिली से काफी अलग है, उन्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए दिखावा नहीं करना पड़ेगा। मेहर का बस चलता तो वो कृषा से बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन मजबूरन उसे नीचे जाना पड़ा। कृषा को देखकर वो उसके पैर छूने को हुई, तभी कृषा तुरंत पीछे हट गई। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं कितनी बड़ी हो गई। मुझे ये सब अजीब लगता है, कृषा ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ समझ सकती हूँ, टाइम चेंज हो गया है। ठीक है फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं, मेहर ने सिर हिलाकर कहा। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पहली बार जब वो सारा के पैर छूले को हुई थी तब भी उसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। मेहर कृषा को हक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कृषा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसी तरह की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से रहो और जो अच्छा लगे वो करो। मेहर ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और मन ही मन कहा, चलो कोई तो समझदार निकला। मैं इन्हें चाइल्डिश समझ रही थी क्योंकि अब तक सुना था कि इनकी हरकतें काफी चाइल्डिश हैं, लेकिन इन्होंने कुछ तो समझदारी की बात की। सही कहा, मैं अपने हिसाब से रहूंगी और अपने मन की करूंगी। ध्रुव ने आपके बारे में काफी कुछ बताया था, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्रिश, मेहर ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। जैसे ही मेहर ने क्रिश कहकर बुलाया, एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सबसे ज्यादा तो ध्रुव का मूड बिगड़ गया, कृषा को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कृषा ने तुरंत कहा, तुम मुझे मिसेज राणा कहकर बुला सकती हो। ध्रुव और युग को अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे उनके अलावा क्रिश कहकर बुलाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेहर ने उसकी बात पर हामी में सिर हिलाया। भले ही उसके होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान थी, लेकिन गुस्से से उसकी मुठियां कसी हुई थी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और कृषा से बोला, अच्छा क्रिश, इन्होंने गोल्डन थीम डिसाइड की है, मैं चाहता हूँ कि आप गोल्डन कलर की साड़ी पहनो, डैड को भी अच्छा लगेगा। ठीक है फिर तुम ही सेलेक्ट करके दे दो, कृषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ध्रुव डिजाइनर के साथ मौजूद हर गोल्डन साड़ी को ध्यान से देख रहा था। उसे एक एलिगेंट डिजाइनर पीस पसंद आया। वो उसे कृषा के पास लाया और बोला, ये परफेक्ट रहेगा। ये सब देखकर मेहर का पारा हाई हो रहा था। उसने मन में कहा, इसने मेरे लिए तो इतनी एफर्ट्स नहीं डाले, मेरे लिए गोल्डन ड्रेस तक पहनने को तैयार नहीं था, जबकि ये थीम मैंने ही डिसाइड की थी। कृषा ने मेहर के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लिया था। सब अपने में व्यस्त थे, लेकिन कृषा ने आंखों ही आंखों में ध्रुव को इशारा किया। ध्रुव समझ गया कि कृषा क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसने उसकी बात मानने से साफ मना कर दिया। कृषा ने धीमी आवाज में कहा, ये बहुत गलत बात है बेबी, तभी युग कहता है कि प्यार ना हो तो शादी मत करो। वो अपना घर छोड़कर आ रही है और उसकी भी तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है। किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका होने वाला हस्बैंड उसे इग्नोर करके बाकी सबको अटेंशन दे रहा हो। अगर तारा ध्रुव की जिंदगी में नहीं आई होती तो वो शायद मेहर के लिए एफर्ट्स डालने की कोशिश करता, लेकिन अब न जाने क्यों उसे ये सब बेमानी सा लग रहा था। कृषा के समझाने पर ध्रुव एक ड्रेस लेकर मेहर के पास गया और बोला, मेहर ये तुम्हारे लिए कैसी रहेगी, इसमें ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, इससे हमारी ड्रेसेस भी मैच हो जाएंगी और तुम्हारी बात भी रह जाएगी। मेहर हैरानी से ध्रुव की ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि ध्रुव उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करके लाया था। उसने ड्रेस को गौर से देखा तो वाकई वो खूबसूरत थी। ध्रुव की चॉइस काफी अच्छी और एलिगेंट थी। इस ड्रेस की ओर पहले किसी का ध्यान तक नहीं गया था, वैसे भी वहां ढेर सारे कपड़े रखे थे। अब तो मैं यही पहनूंगी, मेहर ने मुस्कुराकर कहा।
ऑफ कोर्स, चलो सगाई का हो गया, शादी का पूरा आउटफिट मैं तुम्हारे हिसाब से पहन लूंगा, लेकिन कुछ पेस्टल सिलेक्ट करना, मुझे वाइब्रेंट कलर्स पसंद नहीं है, ध्रुव ने उसका दिल रखने के लिए कहा। हाँ बिल्कुल, मेहर ने जवाब दिया। कृषा के इस छोटे से एफर्ट की वजह से मेहर का मूड ठीक हो गया था। वहीं सारा ने सब कुछ नोटिस कर लिया था। उसने सिर हिलाया और मन में कहा, जबरदस्ती शादी कर रहा है इस लड़की से, लगा ही था जिस तरह ये मुंह बनाकर घूम रहा है, लगता है युग से बात करनी होगी। वो कब से ध्रुव को इतना केयरलेस होने दे रहा है कि ये अपनी लाइफ के साथ खेल रहा है, बेवकूफ लड़का कहीं का। सारा ने तुरंत ध्रुव के दिल की बात को समझ लिया था। उसने कृषा से भी बात करने का सोचा, लेकिन उससे पहले उसे बाकियों को वहां से हटाना जरूरी था। ध्रुव के एक छोटे से कदम से मेहर भी बाकी चीजों में बिजी हो गई थी। तभी कृषा ध्रुव के पास आई और बोली, अच्छा एक और ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प करोगे बेबी? हाँ, लेकिन किसके लिए? ध्रुव ने हैरानी से पूछा। बस ऐसे ही, अगर मुझे साड़ी ना पहननी हो और कोई सेकंड थॉट आए तो दूसरी ड्रेस होनी चाहिए ना, कृषा ने जवाब दिया। ठीक है, कर देता हूँ सिलेक्ट, लेकिन यकीन मानो वो ड्रेस डैड को भी अच्छी लगेगी। अगर दूसरी ड्रेस सिलेक्ट करनी ही है तो ब्लैक सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि आई एम श्योर डैड भी ब्लैक ही पहनेंगे। ध्रुव ने तुरंत कृषा के लिए एक ब्लैक इवनिंग गाउन सिलेक्ट किया, जो देखने में बिल्कुल सिंपल था। स्लीवलेस गाउन जिसके आगे और पीछे नेक थोड़ा लो था और नीचे फुल घेरा था, उस पर किसी तरह का एक्स्ट्रा काम नहीं था। कृषा ने दोनों ड्रेसेस ली और डिजाइनर के पास जाने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ध्रुव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जबकि कृषा के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आपको तो समझ आ गया होगा कि कृषा क्या करने की सोच रही है। देखते हैं कैसे धमाका होता है। जल्दी ही इनकी सगाई और शादी शुरू हो जाएगी। बाकी शादी होगी या नहीं ये तो युग पर डिपेंड करता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। बाकी इनकी शादी में आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे।